स्वागत आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 19 मई और दिन गुरुवार। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती आज। तमिलनाडु में अम्मा या डीएमके।
इलेक्शन बहुत बड़ा टफ है कि पहले बात जयललिता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं था।
केरल में लेफ्ट या कांग्रेस।
लेफ्ट पार्टीज को एक कमजोर ये रहा है कि अच्युतानंदन हो या पिनराय हो, वो पहले थोड़ा कंफ्यूजन रहा है कि किसको लीडरशिप बना के वो प्रोजेक्ट करें।
बंगाल में दीदी या वामपंथियों की वापसी।
माहौल तो अभी टीएमसी का माहौल है,
यहाँ का सीट तो बतला रहा है बीजेपी सीट है।
बदलाव हम किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार दीदी को झटका लगेगा।
क्या असम में खिलेगा कमल? लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। भारत में आज पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती का काम होगा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आएंगे। वोटों की गिनती अब से बस कुछ ही देर में शुरू होगी। ये आवाजें हैं वेनेजुएला में राजधानी काराकास की सड़कों पर हजारों विपक्षी प्रदर्शनकारियों के विरोध की, जो विरोध जताने के लिए सड़कों पर निकले। इन लोगों ने देश में मौजूदा आर्थिक संकट के लिए निकोलस मादुरो की समाजवादी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदर्शन करने आए ओस्लर कास्टिलो ने इसकी वजह बताते हुए कहा, काराकास के लोग आज सड़कों पर खाना और दवाइयां मांगने निकले हैं। ये लोग जनमत संग्रह और शांति चाहते हैं। ये किसी भी तरह से सुरक्षा बलों से भिड़ंत नहीं है, ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है जिसमें नागरिक राष्ट्रीय संविधान में मिले अधिकारों की मांग करने जमा हुए हैं। संक्षेप में ये जनमत संग्रह की मांग है जिससे कि बैलेट के जरिए देश के भविष्य का फैसला हो सके। प्रदर्शनकारी ओस्मर कास्टिलो के शब्द। पुलिस ने इन लोगों पर नियंत्रण के लिए आंसू गैस की गोलियां दागी। एक दिन पहले राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में अशांति के लिए अमरीका पर आरोप लगाए थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका ने चीन पर दक्षिण चीन सागर में अमरीकी टोही विमान को असुरक्षित तरीके से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अमरीकी रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि दो चीनी लड़ाकू विमानों ने अमरीकी विमान से महज 20 मीटर के फासले पर उड़ान भरी। इसकी वजह से अमरीकी विमान के पायलट को अपने विमान को नीचे करना पड़ा जिससे कि चीनी विमानों से टक्कर रोकी जा सके। चीन की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पिछले हफ्ते चीन के जंगी विमानों ने तब उड़ान भरनी शुरू की जब अमरीकी नौसेना के जहाज विवादित इलाके के एकदम करीब पहुंच गए। कीटों के बारे में एक ब्रिटिश रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2050 तक ऐसी स्थिति आ सकती है कि हर 3 सेकेंड में एक व्यक्ति कीट के काटने से मर जाएगा। ये रिपोर्ट कहती है कि बहुत जल्द ही दवा प्रतिरोधी संक्रमण के कारण कैंसर से भी ज़्यादा लोगों की मौत होगी। इसमें कहा गया है कि मरीजों को एंटीबायोटिक्स दवाओं की मांग बंद कर देनी चाहिए क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि मवेशियों पर भी एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार के प्रति वफादार सेना का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को सिरते की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया गया है। तटवर्ती इलाके में मौजूद सिरते को इस्लामिक स्टेट का गढ़ माना जाता है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मई की 19 तारीख और दिन गुरुवार। कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती से। हाल ही में पांच राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती आज की जाएगी। अभी से थोड़ी देर बाद यानी अभी बज रहे हैं 6:34 और 3 सेकंड, तो अभी से लगभग 1.5 घंटे बाद यानी 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप कुमार, कुलदीप कुमार जी आ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। उसके अलावा आज के अखबार क्या कहते हैं इन चुनावों की गिनती के बारे में, वोटों की गिनती के बारे में, उसे बताने के लिए स्टूडियो में हमारे सहयोगी निखिल रंजन भी होंगे, जो हमें बताएंगे कि अखबारों ने आज की इस घटना को किस तरीके से पेश किया है। और फिर हम चलेंगे वहाँ राज्यों में जहाँ BBC संवाददाता भी हमारे साथ होंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले सिर्फ शुरुआत करते हैं कुलदीप कुमार जी से। कुलदीप कुमार जी, आज जो 5 राज्यों में मतगणना वोटों की गिनती की जाएगी, शाम तक नतीजे आ जाएंगे या दोपहर बाद तक नतीजे आ जाएंगे, ये राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अहम है?
देखिए, अहम ये है कि लोकसभा चुनावों में जो उसको आशातीत सफलता मिली, उसके बाद दिल्ली में चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए, जहाँ की उसको बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा, तो इन चुनावों से ये पता चलेगा कि जो मोदी लहर लोकसभा में शुरू हुई थी, क्या अभी भी उसमें जान है, और जान है तो कितनी है। तो इस दृष्टि से जो देश की राजनीति की भावी दिशा है, उस वो काफ़ी हद तक इससे तय होगी, क्योंकि इससे जो विरोधी दल हैं उनकी भी भावी रणनीति पे काफ़ी कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि इन चुनावों के आधार पे ही वो आगे क्या समीकरण होंगे वो।
जी, आपने विरोधी दल का जिक्र किया, उसके बारे में हम आगे आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु से हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश पेरुमल से बातचीत की है और हमें ये बातचीत भेजी है। तो सुनते हैं सबसे पहले कि वेंकटेश पेरुमल क्या कहते हैं तमिलनाडु चुनाव के बारे में।
ADM के खिलाफ ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, और DMK कोशिश कर रहा है कि वो अच्छा सा गवर्नमेंट दे सकता है, उसका कोशिश ये रहा है। लेकिन और भी इस बार 5-corner इलेक्शन रहा तमिलनाडु पे, लेकिन तमिलनाडु का हिस्ट्री ऐसा रहा है कि जैसे भी हो द्रमुक पार्टी ज़्यादा चलती है, पहले ADMK या DMK ऐसा था, और ऐसा कई सालों से ऐसा होता आ रहा है कि इस बार 5 साल ADMK आ गया तो उसके बाद DMK आया हुआ है। लेकिन इस बार एक टफ रिजल्ट आएगा ऐसा बताया जा रहा है कि इलेक्शन बहुत बड़ा टफ है, कि पहली बात जयललिता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं था, और DMK अभी वो करुणानिधि का एज दिखा के और इज़ गेटिंग ओल्ड एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट स्टालिन को ऊपर लाने की कोशिश में, नया अच्छा लीडरशिप है वो दिखाने की कोशिश हो रहा था, और जयललिता का नॉन अवेलेबिलिटी ऐसा वो बता सकते हैं, क्योंकि अभी देखना है कि उनका जो कैंपेन कितना चला है और जयललिता का और फ्रीबीज का कैंपेन है वो कितना असर दिया हुआ है।
तो कितना असर दिया है कैंपेन का, ये बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश पेरुमल, उनसे बात की थी हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने, जो इस वक्त चेन्नई में मौजूद हैं। तो सीधे चलते हैं नितिन श्रीवास्तव के पास। नितिन, आप इस वक्त जहां चेन्नई में हैं, क्या वोटों की गिनती के लिए तैयारियां बिल्कुल साफ दिख रही हैं आपको?
जी देखिए गोल साहब, चेन्नई में परसों से जो मौसम का मिजाज है उसने काफ़ी कुछ डैम्पनर का काम किया है, यानी उससे थोड़ा सा जो सेलिब्रेशंस का माहौल है वो कम हो सकता है। लगातार बारिश हो रही है, हालांकि कल रात के बाद से छिटपुट हुई, ज़्यादा लगातार नहीं हुई है, लेकिन जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि अब से 1-2 घंटे बाद बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जैसा आपने बताया कि 8 बजे से जो है वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से पहले जो बैलेट वोट्स होते हैं, पोस्टल जो उस तरह के बैलेट बॉक्सेस होते हैं उनको पोस्टल वोट्स वो चेक किए, वो गिने जाते हैं, उनके 1/2 घंटे 1/4 घंटे बाद EVMs पे आ जाता है। 11 बजे के आसपास थोड़ी स्थिति साफ होने की उम्मीद है। तैयारियों के लिहाज से बात करें तो पार्टी ऑफिसेज में AIDMK और DMK दोनों के जो पार्टी ऑफिसेज हैं वहाँ पर तैयारियाँ कल सुबह 10:30-11 से शुरू हो गई थी। मैं 2 दफ़े गया वहाँ पर, काफ़ी वर्कर्स स्टेट से भी आए हैं, काफ़ी कार्डर आया हुआ है, और 2 जगह है शहर में, चेन्नई में खासतौर से, जहाँ पर सबकी नज़र रहेगी। एक गोपालपुरम जहाँ पर करुणानिधि का निवास है, और दूसरा पोस्ट गार्डन जहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री जयललिता रहती हैं। और जैसा लग रहा है कुछ भी हो, कितनी भी बारिश आंधी पानी हो, जो भी पार्टी आज जीतेगी, क्योंकि यही प्रमुख बड़े दल हैं जो जो लड़ाई में हैं, वहां पर जबरदस्त आतिशबाजी, गाना बाजा और पॉम्पेंचो होने की पूरी उम्मीद है।
जी नितिन, आपने कहा कि बारिश होगी एक दो घंटे में, लेकिन दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं डीएमके और एआईएडीएमके, उनकी उम्मीदों पर पानी कब फिरेगा, ये मुझे लगता है कि दोपहर से पहले शायद मुश्किल है कुछ कहना।
11:30-12 तक थोड़ा सा स्थिति क्लियर होगी, और क्योंकि वोटों की गिनती 3 मई तक चलेगी, तो मुझे लगता है कि 11 से 12 के दरमियान थोड़ा क्लियर होने लगेगा रुझान क्या है। लेकिन
बारिश का असर किस पार्टी पर ज्यादा पड़ा है?
जी, बारिश के साथ साथ थोड़ा सा जो तमिलनाडु का इतिहास है वो जरा सा अपने श्रोताओं को बताएं कि 2011 में क्या होता है। 2011 में AIADMK यानी जयललिता ने DMK को एकदम साफ कर दिया था, 150 के आसपास सीटें आई थी, DMK के पास मात्र 23 आई थी। और इस बार जो है यहाँ के चुनाव में जो चीज खास हुई है वो ये हुई है कि तमिलनाडु में महिला जो वोटर थी, मतदाता थी, उनका जो प्रतिशत रहा है वो पुरुषों से ज्यादा रहा है। अब जाहिर है उसमें कई लाख नए वोटर्स भी जुड़े हैं, तो इसलिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प है। और कुछ भी कह पाना, किसी को भी किसी भी एग्जिट पोल पे जाना या किसी भी उस पर जाना, मुझे तो कम से कम यहाँ इलेक्शन बहुत टाइट लग रहा है, इतना स्वीप नहीं होने वाला है किसी के लिए ऐसा लगता है।
जी बहुत शुक्रिया नितिन, और आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके पास दोबारा भी आएंगे इसी कार्यक्रम के दौरान, और हम आगे बढ़ें और कुलदीप कुमार जी से भी एक प्रतिक्रिया लें। लेकिन उससे पहले हम निखिल से कहेंगे कि आज के अखबार क्या चुनावों की गिनती के बारे में कुछ खास, कोई अच्छी सी हेडलाइन, कोई सुर्खी है तो ज़रूर बताएँ।
जी इकबाल, हेडलाइन से पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिसमें कांग्रेस बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सर्वानंद सोनोवाल, ये जो असम जहाँ उम्मीद की जा रही है एग्जिट पोल में कि बीजेपी हो सकता है कि सत्ता में वापसी कर जाए, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी तस्वीरें और कटआउट्स जो है उनके लेकर के ये कार्यकर्ता जा रहे हैं और लग रहा है कि ऐसी तैयारी है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत दिलचस्प हेडलाइन लगाई है इंडियन एक्सप्रेस ने, वो लिखता है कि तरुण गोगोई ने जो है वो इतना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के, अपनी वापसी को लेकर के, कि उन्होंने अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं खानी बंद कर दी हैं और बड़े रिलैक्स होकर के अपने घर में बैठ गए हैं। तो
असम के बारे में तो हम खैर हम विस्तार से बात करेंगे, तमिलनाडु के बारे में कोई और किसी दूसरे अखबार में?
तमिलनाडु के बारे में ऐसी असल में अखबारों ने आज की जो सुर्खियां हैं उसमें पूरा ध्यान उनका गर्मी और दूसरी खबरों पर रहा है, और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कल के लिए ये दिन छोड़ रखा है, कि बचा करके रखा हुआ है कि वो कल इस सब जुड़ी समाचारों को जगह देंगे।
निखिल आप बने रहे, हम आपसे बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। और कुलदीप जी के पास लौटते हैं, कुलदीप जी क्या लगता है कि तमिलनाडु में एक जो बात ही आ रही कि मोदी या भारतीय जनता पार्टी क्या कोई सेंध लगा पाएंगे वोट प्रतिशत में या सीटों में किसी तरह की?
अब देखिए ये तो भविष्यवाणी करना जाहिर है बड़ा मुश्किल है,
लेकिन उम्मीद बहुत है उनको।
उनको तो उम्मीद केरल में भी बहुत है और असम में भी बहुत है, और इसके पहले आपने चुनावों में देखा दिल्ली में भी बहुत थी, बिहार में भी बहुत थी। तो उम्मीद तो सब हर पार्टी को जो भी चुनावी मैदान में उतरती है उसको होती है, लेकिन कोई ऐसा कारनामा बीजेपी का पिछले 2 साल में नहीं है, न तो राज्य के स्तर पर न राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे कहा जा सके कि तमिलनाडु में अचानक उनके पक्ष में कोई हवा बहने लगेगी। तो इक्का दुक्का कोई सीट मिल जाए कोई तो अलग बात है, लेकिन मुख्य लड़ाई तो इन दो के ही बीच में है, DMK IADMK, और उसमें भी जो तमिलनाडु का इतिहास रहा है केरल की तरह कि एक बार एक पार्टी आती है दूसरी बार दूसरी आती है, तो जैसा कि अभी नितिन बता रहे थे कि शायद देखना यही है कि क्या वाकई इस बार पिछला वो इतिहास दोहराया जाता है कि एक पार्टी का पूरा सफाया हो जाए, तो वो देखने वाली बात होगी कि जो भी पार्टी हारती है वो उसके किस मार्जिन से हारती है।
जी लेकिन आपके पास जो खबरें हैं वो शायद या जो भी फील्ड से नितिन या दूसरे लोग या और दूसरे पत्रकारों से या लोगों से बातचीत के आधार पर शायद ये कहा जा सकता है कि वो ऐसा शायद न हो कि एक सफाया हो जाए और एक पूरी तरह जीत जाए। लोग बता रहे हैं, एग्जिट पोल भी ये बता रहे हैं कि टक्कर शायद कांटे की होगी और जयललिता शायद इतिहास को नकार भी पाएं।
जी शायद हो सकता है, लेकिन अभी तक जो खबरें हैं वो यही हैं कि वहाँ जो पिछले दिनों जो भारी बाढ़ आई थी और उसमें जो राज्य प्रशासन काफ़ी
पूरी तरह से गायब
था, उसका शायद लोगों पे बहुत असर पड़ा है। और दूसरे जैसा कि नितिन भी बता रहे थे कि जयललिता चूंकि बहुत ज़्यादा मिलने जुलने में विश्वास नहीं रखती हैं, वो इस मामले में हमारी उत्तर प्रदेश की मायावती जैसी ही हैं
जी,
तो इसलिए उसका भी शायद कुछ असर पड़ेगा लगता मुझे। मेरी अपनी जाति जो वो है फीलिंग वो ये है कि डीएमके शायद सरकार बनाएगी
जी। तो अब बात थोड़ी केरल के कर लेते हैं। केरल में 140 विधानसभा की सीटें हैं और वहाँ जो प्रमुख दल है वो एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी अगुवाई जाहिर वामदल करते हैं, दूसरा कांग्रेस की अगुवाई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ है। इस वक्त वहाँ यूडीएफ की सरकार है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है और शायद एलडीएफ की वापसी भी हो जाए, बहुत तमाम जो भारतीय मीडिया हैं उनके जो एग्जिट पोल हैं। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश पेरुमल क्या कहते हैं केरल के बारे में।
जो केरल में देखा जाए तो ज़्यादा पहला मुद्दा रहा कि यूडीएफ के खिलाफ जो मुद्दा रहा कि उनका एक सोलार स्कैम हुआ था, सो वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा यूडीएफ के खिलाफ एलडीएफ ने उठाया था। और वहाँ भी जैसे तमिलनाडु के जैसा वैसा है कि 5 साल यूडीएफ आ गया तो 5 साल एलडीएफ आएगा, ऐसा ही था।
एलडीएफ यानी लेफ्ट पार्टीज,
लेफ्ट पार्टीज आते हैं उधर। इस बार जो चीफ मिनिस्टर उम्मन चांडी के खिलाफ भी ज़्यादा आरोप उठाया गया, उसका जो स्कैम में और उसके मिनिस्टर में जो मानी था उसके ऊपर भी एक आरोप हुआ कि बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया जो केरल में जो यूडीएफ के खिलाफ जा सकता है। लेकिन एलडीएफ को लेफ्ट पार्टीज को एक कमज़ोर ये रहा है कि उनका लीडर्स जो हैं वो जो अच्युतानंदन हो या पिनराय हो, वो पहले थोड़ा कन्फ्यूजन रहा कि किसको लीडरशिप बना के वो प्रोजेक्ट करें, लेकिन वो अभी भी है। फिर भी उन्होंने जो इलेक्शन के पास आते ही अपना जो भी गठबंधन मजबूत बनाया और मजबूत दिखाने की कोशिश किया और उसका कैंपेन पूरा अच्छा रहा। और इस इलेक्शन में एलडीएफ को यूडीएफ का जो भी फ़ायदा हुआ हो, लेकिन बीजेपी का जो असर जो है वो केरल में बहुत ज़्यादा लगेगा और हो सकता है इस बार वो अपना नाता केरल में असेंबली में खोल सकते हैं, बीजेपी का विधानसभा में अपना एमएलए भी हो सकता है इस बार केरल में।
तो वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश पेरुमल कह रहे थे कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी केरल विधानसभा में अपना खाता खोल ले। अपने श्रोताओं को मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि केरल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपने लिए जगह नहीं बना पाई है। ये तो थे वेंकटेश पेरुमल, लेकिन सुनते हैं कि कुछ आम लोग जो हैं केरल के वो इन चुनावों के बारे में क्या कहते हैं। उसे भेजा है हमारी संवाददाता दिव्यार ने, तो पहले सुनते हैं कि आम लोग क्या कह रहे हैं।
क्या बोलने का, वो सबसे बड़ा इश्यू है सेकुलरिज्म, ये सबसे पीपल चाहिए अच्छा इंडिया बनाने के लिए, सबको जरूरत ही है उसको वोट करने के लिए।
भ्रष्टाचार और संप्रदाय है, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एट द सेम टाइम द यूथ ऑफ दिस केरला इज ट्राइंग टू गेट डिफिकल्ट टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर इन केरला।
यानी कि नौकरियों को लेके इस बार लोग
वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द स्टेट्स एंड हूएवर कम्स इन द पावर दे ऑल यूजिंग देयर ओन अपने फायदे के लिए कर रहे हैं।
मैं एक फौजी हूँ, मुझे ये पार्टियाँ वो पार्टियाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, सब बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे और पब्लिक को।
तो सब बराबर हैं, पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता दिव्यार। दिव्या, क्या ये जो सज्जन कह रहे थे कि पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या वाकई ऐसा होता है कि मतदाता इतनी बेरुखी हो गई है उनमें चुनावी प्रक्रिया को लेकर?
इकबाल जी, केरल के लिए कहना सही नहीं होगा, पर ये तीन आवाजें थी, ये एक रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से, आपको एक जैसे कहते हैं ना ट्रेलर दिखाया गया है केरल का, क्योंकि यहाँ का वोटर वैसे बहुत सजग है, बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है। यहाँ पे 77% से ज्यादा मतदान हुआ, जो कि पिछले असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव जो 2011 के थे उससे भी ज्यादा था। तो यहाँ पे लोग बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, लेकिन एक ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी है यहाँ के चुनाव की कि 5 साल बाद सरकार बदलनी ही है, 1982 से जो ये चला आ रहा है, तो ये लोग जैसे इसको एक्सपेक्ट करते हैं। जब मैं 2 हफ्ते पहले यहाँ पहुंची ही थी और अपना चुनावी कवरेज शुरू ही किया था तो लोगों से यही सुनने को मिलता था, इस बार तो एलडीएफ यानी कि वाम पार्टियों का जो गठबंधन है उसकी बारी है। तो ये एक थोड़ी हताशा या इसका हिस्सा जो लोग बन गए हैं वो भी है, लेकिन इस बार लोग बदलाव की बात जो कर रहे हैं वो शायद सिर्फ एलडीएफ के आने और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके जाने का बदलाव नहीं है, इस बार बीजेपी की भी बात हो रही है। और जो महिला कह रही थी कि सेक्युलरिज्म इस बार बड़ा मुद्दा है, वो दरअसल बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि केरल में एक बहुत ही सेक्युलर एनवायरनमेंट है, बहुत ही धर्मनिरपेक्ष एनवायरनमेंट है। यहाँ इस तरह से रिलीजन को नहीं उठाया जाता चुनाव में, जिस तरह से हम उत्तर भारत के कई प्रदेशों में देखते हैं। इसीलिए शायद अभी तक बीजेपी ना लोकसभा ना विधानसभा में यहाँ खाता खोल पाई है, पर इस बार वो बदल सकता है।
जी, और दिव्या, अगर मुझे याद है तो आपने भाजपा के की टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व क्रिकेटर श्री संत से बात भी की थी, क्या उनके लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है?
इस बार जो अहम सीटें जहां पे बीजेपी के जीतने की कोई उम्मीद जताई जा रही है, उसमें एक श्रीसंत हैं जो यहां त्रिवेंद्रम जहां पर मैं अभी मौजूद हूं राजधानी वहीं से कंटेस्ट करें, लेकिन उनके खिलाफ मौजूदा कांग्रेस सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खड़े हैं, तो टक्कर का मुकाबला है। एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो 8 बार कभी लोकसभा कभी विधानसभा का चुनाव त्रिवेंद्रम से लड़ चुके हैं और 8 बार हारे हैं, हो सकता है वो जीते। और कन्नूर जो यहाँ पर राजनीतिक हिंसा का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे वाम पार्टी की और बीजेपी की बहुत कड़ी टक्कर मानी जाती है, हो सकता है वहां पर बीजेपी को कुछ बढ़त मिले, क्योंकि वहां का जो हिंदू वोट है उसको उन्होंने रिझाने की कोशिश की है।
बहुत शुक्रिया दिव्या आपका इस जानकारी के लिए। और एक दफ़ा फिर स्टूडियो लौटते हैं, हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं। कुलदीप जी, क्या एलडीएफ की वापसी हो रही है?
लग तो यही रहा है सारी रिपोर्ट्स के जो अखबारों में भी आई हैं पहले और अलग अलग स्रोतों से, तो उससे यही लग रहा है कि इस वक्त वामपंथी जो मोर्चा है वो वापस आएगा सत्ता में।
जी, और क्या भारतीय जनता पार्टी, एक दफ़ा फिर मैं वही पूछूंगा कि क्या खाता खोल पाएगी?
उन्होंने कोशिश तो काफ़ी की है, गठबंधन भी अपना
बनाया एसएनडीपी से। जी
जी हाँ, तो और उनका अपना कुछ एड़वा लोगों में वो है, असर है, लेकिन हो सकता है 1-2 सीट इस बार मिल जाए, क्योंकि इस बात का भी बड़ा फर्क पड़ता है कि केंद्र सरकार बीजेपी की है और उसे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 ही साल हुए हैं, अभी आधा उसका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है, तो लोगों की उम्मीदें मोदी जी से कम तो हुई हैं, लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि लोग एकदम मोदी जी से हताश हो गए हों, तो अभी भी बहुत से लोगों को उम्मीद है कि शायद मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कुछ करे, तो ऐसे लोग वोट कर सकते हैं।
जी, और साथ में आपको ये भी बता दें कि पुडुचेरी में भी चुनाव हुए थे, जहां 30 विधानसभा की सीटें हैं, और जो एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो जीत सकता है। बहरहाल इसकी स्थिति तो 2-3 घंटे के बाद ही पता चलेगी। और अब चलते हैं पूर्वी भारत की ओर, पश्चिम बंगाल सबसे पहले, जहाँ सलमान रावी हमारे बीबीसी संवाददाता भी मौजूद हैं, और उन्होंने वहाँ कुछ लोगों से बात की है कि वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं। सबसे पहले सुनते हैं लोगों की आवाज।
क्या लगता है अभी जो एग्जिट पोल वोल आ रहे हैं, सब टीवी पर देख रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है अभी आपको?
माहौल तो अभी टीएमसी का माहौल है, और यहाँ का सीट तो बतला रहा है बीजेपी सीट है, राहुल सिन्हा यहाँ का बीजेपी का प्रेसिडेंट है वो।
लेकिन बंगाल में तो बीजेपी का कुछ उतना वो
नहीं है, हिंदी भाषा यहाँ ज़्यादा है ना, सुनने में तो आ रहा है बीजेपी यहाँ से जितने वाला है
यहीं से ना, बंगाल से तो नहीं
ना, पूरा 1-2 सीट भी तो तकदीरबाजी मिल गया तो मिल गया।
किसान है, हम लोग मजदूर पार्टी है, पेट पार्टी, खड़ा और खाओ पार्टी, पॉलिसी से कोई मतलब नहीं। सारे बदलाव हम किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार दीदी को झटका लगेगा।
तो आखिर क्यों लगेगा?
हाँ
क्यों
को क्यों लग रहा? हम लोग रोज केस खा रहे हैं, तो उसका लिए हम लोग बोलेंगे नहीं।
क्या किस तरह के केस?
तब किस तरह के? अब जो धरिए 4 का जगह 5 ले लिया, तुरंत पकड़ कर रोक दिया, नो पार्किंग केस, पैसेंजर उठा रहे चाहे उतार रहे हैं दाड़ा, नहीं सीपीएम का टर्न ऐसा बात।
आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम राजकुमार है, लेकिन हम यहाँ कुछ बोल नहीं पाएंगे, चाय वाले हैं ना, चाय की दुकान तो बहुत पुरानी है, हम 10 साल से चला, पहले से बहुत खराब है।
लेकिन सीपीएम का लोग बोलते थे कि खराब था।
नहीं, वो राजनीति चला तो चला,
अभी और खराब चला,
अभी तो और खराब है,
कम हो सकती है, मगर सीट टीएमसी का ही है,
सरकार टीएमसी का बनी।
देखिए हम तो बिहार से आए हुए हैं
जी,
और दूसरे में यहाँ का पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों से सुन रहे हैं कि ये जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनका न जीत कुछ आगे न चल रहा है, और फिर भी न लोग कहते हैं कि 3 गुज झूठ होकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कुछ कहा नहीं।
तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, बता रहे थे एक मतदाता। और बीच बीच में आपको अगर आवाज़ में कोई दिक्कत आई तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। दरअसल सलमान रावी ने सड़क पर लोगों से बात की थी तो उसमें बाज़ दफ़ा ये दिक्कत आ जाती है। तो इस वक्त चलते हैं सलमान रावी के पास जो टेलीफोन लाइन से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, क्या पूरी तैयारी हो चुकी है वोटों की गिनती की?
जी बिल्कुल, 90 काउंटिंग सेंटर्स हैं पूरे पश्चिम बंगाल में और सभी जगह काफ़ी कड़ी सुरक्षा की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं और यहाँ पर थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी है कि तूफान आने वाला है। अब ये तूफान बंगाल में भी है और उसके साथ साथ राजनीतिक तूफान भी है, क्योंकि ये एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की जो सीटें हैं वो कम हो सकती हैं और लेफ्ट और कांग्रेस का जो ये गठजोड़ है जिसे जोट कहते हैं बंगाल में, उसको काफी गेन होगा यहाँ पर, पहले से बेहतर स्थिति में रहेगी। लेकिन यह है कि सबकी नजरें लगी हुई हैं क्योंकि काफी घमासान था पश्चिम बंगाल में। इस बार जो चुनाव देखा गया उसमें काफी संघर्ष था, शायद यही वजह है कि 6 चरणों में यहाँ चुनाव कराए गए हैं। और ये तो है कि जो नारदा और शारदा का जो भूत है वो ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं को कितना परेशान कर सकते हैं।
जी बहुत शुक्रिया सलमान। और इसी क्रम में आपको ये भी बता दें कि असम जो पूर्वोत्तर का राज्य है वहाँ 126 विधानसभा की सीटें हैं और उसके लिए चुनाव में भाजपा को ऐसा लग रहा है और एग्जिट पोल भी ऐसा कह रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुछ बेहतर कर सके, यहाँ तक कि सरकार बनाने की भी पोजीशन में। लेकिन साथ में आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिलारी और जंगीपुर विधानसभा सीटों पर भी जो उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे आज आने वाले हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समीर आत्मज मिश्र। समीर आत्मज मिश्र, बहुत ही संक्षेप में ये बताएं कि ये जो 2 सीटें हैं विधानसभा की उपचुनाव की, उसके नतीजों की क्या अहमियत होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में?
जी बाल, अहमियत यह है कि 1 सीट बिलारी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और जंगीपुर जो गाजीपुर जिले में आती है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और दोनों ही इलाके इस समय राजनीतिक रूप से बहुत ही एक कह लीजिए कि बहुत ही चर्चा में है। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, बसपा ने तो इस उपचुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों ने पूरी मुस्तैदी दिखाई है बाई इलेक्शन में, खासतौर पर बिलाई की सीट पर, चूंकि और पिछली बार जो 3 सीटों पे उपचुनाव हुए थे मुजफ्फरनगर, देवबंद और बीकापुर, उनसे जिस तरह से समाजवादी पार्टी की 2 सीटें भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर के छीनी थी उससे इन दोनों पार्टियों का उत्साह बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए इन सीटों को, ये दोनों सीटें बिलारी और जंगीपुर समाजवादी पार्टी के विधायकों के निधन से खाली हुई है, तो समाजवादी पार्टी के लिए इनको बचाना चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसमें कि अगर इनमें से ही सीट मिल जाए तो इसके लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी।
बहुत शुक्रिया समीर। और बस आपको एक जानकारी अपने श्रोताओं को और दे दें कि उत्तराखंड में बागी जो कांग्रेस विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, 9 नेताओं समेत कल रात में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उसमें शामिल हो गए। और बहुत ही संक्षेप में 45 सेकंड के आसपास है कुलदीप जी, ये जो लार्जर पिक्चर है जो आज के नतीजे आएंगे दोपहर बाद तक, वो आप क्या देखते हैं?
लार्जर पिक्चर तो मैं यही देखता हूँ कि जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ काम करेगा, तमिलनाडु में भी, पश्चिम बंगाल में भी, केरल में भी, असम में भी करेगा, क्योंकि 15 साल से तरुण गोगोई वहाँ हैं और ध्रुवीकरण की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भी कोशिश है। तो लार्जर पिक्चर में यही देखता हूँ कि एक जो बदलाव की लोगों को हमेशा चुनाव से उम्मीद रहती है तो उन्हें बदलाव तो दिखेगा।
जी बहुत शुक्रिया कुलदीप कुमार जी आपका। और जाते जाते मैं निखिल से कहूँगा कि हमारे श्रोताओं को वो प्रमुख समाचार ज़रूर सुना दें।
बीबीसी समाचार। भारत में आज 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती का काम होगा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आएंगे। वोटों की गिनती अब से बस कुछ ही देर में होगी। वेनेजुएला में राजधानी काराकास की सड़कों पर हजारों विपक्षी प्रदर्शनकारी विरोध जताने के लिए निकले। इन लोगों ने देश में मौजूदा आर्थिक संकट के लिए निकोलस मादुरो की समाजवादी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अमरीका ने चीन पर दक्षिण चीन सागर में अमरीकी टोही विमान को असुरक्षित तरीके से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कीटों के बारे में एक ब्रिटिश रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2050 तक ऐसी स्थिति आ सकती है कि हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति कीटों के काटने के कारण मर जाएगा। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद 8 बजे, और उसी वक्त वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, तो आप इंतज़ार करिए एक घंटे। लेकिन आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।